नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 11 श्लोक संख्या 22 अध्याय का शीर्षक है वृतासुर के दिव्य गुण। पुंसा किल एकांत धिया स्वकाना यह संपदा दिवी भूमौ रसाया ना राति या द्वेषः उद्वेगः आदिः मदः कलिः व्यसनं संप्रयासः। पुंसां किलैकान्त धियां स्वकानां यः संपदो दिवि भूमौ रसाया न राति यद्वेष उद्वेगाधि मदः कलिर्व्यसनं संप्रयासः। पुंसां किलैकान्त धियां स्वकाना यः संपदो दिवि भूमौ रसाया न राति यद्वेषु द्वेगाधि मदकलिर्व्यसनं संप्रयासः। पुंसां किलैकान्त धियां स्वकाना यः संपदो दिवि भूमौ रसाया न राति यद्वेषु द्वेगाधि मदकलिर्व्यसनं संप्रयासः। बोलिए
माताएं
माताएं मनुष्यों को किला निश्चय ही एकांत धिया आध्यात्मिक चेतना में उन्नत स्वकान श्री भगवान ने के अपने श्री भगवान के अपने यहां जो संपदा ऐश्वर्य दिवी स्वर्लोक में भूमौ मध्यलोक में रसाया तथा अध लोकों में ना नहीं राति प्रदान करता है यत् जिससे द्वेषः द्वेष ईर्ष्या उद्वेगः चिंता आदि ही मानसिक शोध मदः घमंड कलिही कलय व्यसनम हानि के कारण उत्पन्न दुख संप्रयास महान प्रयत्न। अनुवाद और तात्पर्य सुनिए श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो व्यक्ति श्री भगवान के चरणारविंद में पूर्णतया समर्पित होते हैं और उनके चरणारविंद का निरंतर चिंतन करते हैं उन्हें भगवान अपने पार्षदों या सेवकों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अनुवाद लंबा है इसलिए दोहराएंगे नहीं। भगवान ऐसे सेवकों को उच्च मध्य तथा निम्न लोकों का ऐश्वर्य नहीं प्रदान करते क्योंकि जब उन्हें इन लोकों में से किसी एक की भी प्राप्ति हो जाती है तो उससे शत्रुता चिंता मानसिक क्षोभ गर्व तथा कलह की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य को अपनी संपत्ति को बढ़ाने और उसको बनाए रखने में काफी प्रयास करना पड़ता है और जब संपत्ति छूटती है तो उसे परम दुख होता है। ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तात्पर्य सुनिए। भगवद गीता में भगवान का कथन है ये यथा मां प्रबद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव से मेरी शरण लेते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ प्रत्येक मनुष्य सब प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। इंद्र तथा वृतासुर दोनों ही भगवान के भक्त थे। यद्यपि इंद्र ने वृतासुर को मारने के लिए भगवान विष्णु का आदेश ले रखा था वास्तव में वृतासुर के प्रति भगवान अत्यंत कृपालु थे क्योंकि इंद्र के वज्र से वृतासुर के मारे जाने पर वह भगवान के धाम पहुंचेगा जबकि विजयी इंद्र को इसी संसार में सड़ना पड़ेगा। चूंकि दोनों भक्त थे भगवान ने उनकी इच्छानुसार उन्हें वरदान दिया। वृतासुर ने कभी भौतिक संपत्ति की कामना नहीं की क्योंकि उसे इसकी नियत का पता था।
संपत्ति एकत्र करने के लिए मनुष्य को काफी श्रम करना पड़ता है और उसके प्राप्त होने पर अनेक शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये संसार प्रतिद्वंदिता से ओतप्रोत है। यदि कोई धनी हो जाता है तो उसके मित्र तथा परिजन उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। एकांत भक्तों को श्री कृष्ण भौतिक संपत्ति नहीं प्रदान करते। कभी कभी भक्त को उपदेश कार्य के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है, किंतु कर्मी के समान नहीं। कर्मी का धन कर्म के फल स्वरूप प्राप्त किया जाता है, किंतु भक्तों के धन की श्री भगवान द्वारा व्यवस्था की जाती है, जिससे वह भक्ति के लिए कार्य कर सके। चूंकि भक्त भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए धन का प्रयोग नहीं करता, भक्त के धन की तुलना कर्मी के धन से नहीं की जानी चाहिए। बड़ा सुंदर वर्णन है वृत्तासुर के बारे में। वृत्तासुर के दिव्य गुण बताए गए हैं। भक्त के दिव्य गुण क्या होते हैं? भक्त जो है किसी परिवार में भी, किसी योनि में भी प्रकट हो सकता है, और क्योंकि उसका उद्देश्य यही होता है कि वह भगवान की सेवा करे। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला में 22वें अध्याय के 37वें श्लोक में कह रहे हैं सनातन गोस्वामी को, कृष्ण कहे आम भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे यही बड़ो मूर्ख। मतलब क्या है इसका? कृष्ण कहे आम भजे है ना, मागे विषय सुख। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा भजन करते हुए विषय सुख मांग रहा है, बेवकूफ। अमृत छाड़ी विष मांगे, अमृत को छोड़ के विष मांग रहा है, पॉइजन, यही बड़ो मूर्ख। बहुत बड़ा मूर्ख है ऐसा कि विष को चाहता है अमृत को छोड़कर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है जहां चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं बनारस में। तो ये जो शिक्षा है हम सबके लिए है ना, हम सब जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो हम सबके लिए शिक्षा है जो चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी को दी है। और यह शिक्षा सनातन शिक्षा है, सनातन गोस्वामी के लिए शिक्षा है और सनातन शिक्षा है, हमेशा हम लोग इसको स्वीकार कर। हम देखते हैं सनातन गोस्वामी के जीवन में भी, जब सनातन गोस्वामी ब्रज में भजन कर रहे थे तो काशी से आया था एक भक्त, शिव भक्त, उसका नाम था जीवन ठाकुर। और वो जीवन ठाकुर जब सनातन गोस्वामी के पास आया, जय हो श्री राधिका रमन की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौरताय की जय, तो सनातन गोस्वामी भजन में मग्न थे। शिवजी ने जीवन ठाकुर को भेजा था कि बहुमूल्य वस्तु अगर प्राप्त करनी है तो आप जाइए। आपने सुना होगा भाई सनातन गोस्वामी का तिरुभाव था ना, कब? परसों है ना। तो सनातन गोस्वामी का जीवन चरित्र बहुत ही विस्तार से दिया गया है चैतन्य चरितामृत में। तो जीवन ठाकुर जो आए, जब वहां पहुंचे, शिव भक्त है वो, शिवजी ने उनको भेजा था सनातन गोस्वामी के पास। तो सनातन गोस्वामी भजन में मग्न थे। सनातन गोस्वामी से कहा, पूछा उन्होंने कि हमें तो महादेव ने आपके पास भेजा है और हमें पता चला आपके पास बहुमूल्य वस्तु है, कोई क्या मुझे मिल सकती है वस्तु, बहुमूल्य वस्तु, सबसे कीमती वस्तु आपके पास है, कृपा मुझे दीजिए, कृपा करके। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, हाँ है मेरे पास बहुत कीमती चीज, वो देखो उधर उस कूड़ेदान में पड़ा एक पत्थर, वो ले लो। पत्थर ये साधारण नहीं है, पारस पत्थर है, टच स्टोन। जिस धातु को छुओगे वो धातु जो है सोना बन जाएगा। रियली? तो ठीक है मैं ले लेता हूं। तो जीवन ठाकुर जो है वो कूड़े से निकाल लिए पारस पत्थर को और चल दिए। शिवजी ने कहा, तुम मूर्ख हो। क्यों भाई? आपने जो है कूड़ेदान से लिया है पारस पत्थर, जरा सोचो, बुद्धि है कि नहीं? सनातन गोस्वामी इसको कूड़ेदान में डाल के रख रहे हो और आप जो है उसको लेके आ रहे हो बहुमूल्य वस्तु सोच के, सोचा कभी आपने? तो फिर सनातन गोस्वामी के वापस गए, उन्होंने कहा कि महादेव ने बताया कि मैं तो मूर्ख हूं और आपने जो है मुझे बुद्धू बनाया, आपने कूड़ेदान से निकाल के दे दिया। सनातन गोस्वामी जो है बोले, हां बात सही है, ये सबसे कीमती चीज तो है नहीं मेरे पास, सबसे कीमती चीज तो मेरे पास है, मैं दे सकता हूं अगर आप लेने के लिए तैयार हो तो। बोलो बताओ। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि नाम, हरि नाम अगर ये लोग है ना, सबसे बहुमूल्य वस्तु ये, इससे बहुमूल्य वस्तु पूरे त्रिभुवन में नहीं है। नाम विना किछु नाई को आर, 14 भुवन माजे, ठाकुर भक्ति विनोद कह रहे हैं। इस 14 भुवन में नाम के अलावा, नाम से बढ़कर कोई और कोई आश्रय नहीं है। नाम आश्रय कोरी चतने तुम ही थकन आपन काजे, भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं ना। तो नाम का आश्रय, ये सबसे बहुमूल्य वस्तु है, सबसे कीमती वस्तु हरि नाम है, ये ले लो। जीवन ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए, बाद में जीवन ठाकुर उनके शिष्य बन गए सनातन गोस्वामी। तो कहने का अर्थ यह है कि ये बात महादेव भी जानते हैं। महादेव जो है अकिंचन है ना, अकिंचन गोचर। शिवजी क्या है? अकिंचन गोचर। तो कोई आसक्ति नहीं है, पेड़ के नीचे रहते हैं और ठीक से वस्त्र भी नहीं पहने हैं, लेकिन उनका मन कहां है? उनका मन भजन में है, भजन में मग्न है पूरी तरह से महादेव जी। और अपने भक्तों को भी इसी तरह से प्रेरणा देते हैं कि वो कृष्ण भक्ति में लगे हैं, जो वास्तव में चाहते हैं। सनातन गोस्वामी शिव जीवन ठाकुर के पर शिव जी की विशेष कृपा थी। सामान्य तो शिव जी के पास लोग जो है बौद्धिक इच्छाएं लेकर जाते और बौद्धिक इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं महादेव, लेकिन कभी कभी शिवजी भी सोचते होंगे कि ये बेवकूफ, इतने सारे बेवकूफ मेरे पास आ रहे हैं और मैं इनको जो है देता जाता हूं धन संपत्ति ऐश्वर्य, लेकिन मुझे कभी कभी तो इन लोगों को भी शिक्षा देनी है ना। तो इसलिए सनातन गोस्वामी के पास शिवजी ने जीवन ठाकुर को भेजा था। कुंती महारानी भी यही कह रही है भागवत के प्रथम स्कंध के 8वें श्लोक के 26 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं कुंती महारानी। जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री वीर एदमाना मद पुमान नैवार्ति अभिदातुम वही त्वाम अकिंचन गोचरम। अब अकिंचन गोचर हैं। और कहने का अर्थ है कि अकिंचन जो गोचर हैं, या जो उनके पास संपत्ति नहीं है, जो गरीब हैं, भिखारी हैं, कुछ नहीं है संसार में जिनके पास, वो बड़ी आसानी से आपके पास आ सकते। लेकिन जिनके पास ये ऐश्वर्य है, अच्छे कुल में जन्म लिया है, बहुत धन है, सुंदरता है, विद्वत्ता है, तो ये सब जो है क्या है बता रहे हैं, एदमाना मदपवान, ये सब नशा है, इंटॉक्सिकेशन है। अच्छे कुल में जन्म ले लिया, बहुत सारी डिग्रीज प्राप्त कर ली, IITian बन गए, बहुत सारे क्वालिफिकेशन हो गए है ना, जितने भी डिग्रीज है प्राप्त कर ली, संसार में माला नहीं पकड़ी जा रही, बहुत मुश्किल है। फिर भक्त लोग आते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं, कल्टीवेट करते हैं, आपको समझाते हैं, धीरे धीरे सिस्टमैटिकली समझाते हैं, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल का सेमिनार देते हैं है ना, पावर ऑफ बैड हैबिट्स का सेमिनार देते हैं, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल का सेमिनार देते हैं है ना। इस तरह से धीरे 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 कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं बेचारे क्या करें, अब उनकी बुद्धि बचपन से उनकी तर्क बुद्धि बनाई गई है कि जो भी कुछ कहे तो उसके लिए कुछ पूछो, दिमाग में घुस गया उनकी बात, तो कैसे कृष्ण परम भगवान है जी, हम कैसे मान ले, हम नहीं मानते, पहले हमें कन्विंस करो है ना, कन्फ्यूज मत करना, लेकिन करप्ट भी मत करना, कन्विंस करना सिर्फ। तो कन्विंस करने में पूरा जीवन बीत जाता है, उसमें से जो है इक्के दुक्के निकल के आते हैं, IITian निकले आएंगे, फुल टाइम बनने लगेंगे और टेम्पल में भक्त बन जाएंगे, और कुछ लोग तो बाहर ही रहकर ही भक्ति करना चाहेंगे। तो बड़ा मुश्किल है विद्वान लोगों को जो भौतिक विद्वत्ता प्राप्त किए हैं, जो माया का बहुत बड़ा वैभव है, जड़ विद्या माया और वैभव, ठाकुर भक्ति विनोद कह रहे हैं माया का वैभव है, भौतिक ज्ञान जड़ बुद्धि को और जड़ बना देता है। जड़ विद्या का मतलब ही है कि हमारी जो चेतना को और जड़ बना दे, समझने बात को, जिसने अधिक भौतिक ज्ञान प्राप्त किया वो उतना ही संसार के साथ चिपका रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, सच तो बोलना पड़ेगा, सबके ऊपर लागू होती है बात ये। तो विद्वान होना भौतिक स्तर पर, भौतिक विद्वत्ता, ये भक्ति के लिए लाभकारी नहीं है, इसलिए बहुत समय लग जाता है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे वैज्ञानिक हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, टॉयलेट साफ करो, बाथरूम साफ करो, झाड़ू मारो, स्टूल निकालो टॉयलेट से, हाथ से, निम्न से बिल्कुल नम्रता से सेवा करो है ना। इंजीनियर होंगे आप अपने घर पे, लेकिन यहां टॉयलेट साफ करो, तो लेकिन फिर भी ये जो है माया इतनी प्रबल है, छह महीना ट्रेनिंग हो गया, एक महीना ट्रेनिंग, एक साल ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद जैसी ट्रेनिंग समाप्त फिर से माया पकड़ लेती, नहीं नहीं हम तो क्वालिफाइड हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये जो है माया बहुत प्रभावशाली, माया का प्रकोप चारों तरफ फैला हुआ है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भीर, अच्छे कुल में जन्म ले लिया जी, हम ब्राह्मण परिवार में है, हम तो पहले ब्राह्मण परिवार में थे, हमने बहुत सारे वैदिक मंत्र सीख लिए हैं, संस्कृत के श्लोक पहले से हम जानते हैं, संस्कृत ने पीएचडी किया हुआ है, आप ये क्या भगवत गीता भागवत, यहां तो भक्तों को श्लोक का उच्चारण भी ठीक से नहीं आ रहा है, सब गलत गलत उच्चारण कर रहे हैं। प्रभुपाद को भी बोला, प्रभुपाद को बोला कि आपके जो शिष्य हैं उनको तो संस्कृत ठीक से आती नहीं है, उनका उच्चारण ठीक नहीं है संस्कृत श्लोकों का। प्रभुपाद ने कहा मैं मानता हूं उनके संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण ठीक नहीं है, लेकिन इनमें एक काबिलियत है, एक योग्यता है, जानते क्या बताइए, इनमें योग्यता ये है कि जो मैं कहता हूं वो ये करते हैं, ये है इनकी योग्यता। आप संस्कृत सीख लो और स्वीकार ना करो कि कृष्ण परम भगवान है, यूजलेस है ना। दो मायावादी आए इसी तरह से, तो वो बहुत तर्क कर रहे थे, बहुत शास्त्रार्थ कर रहे थे, प्रभुपाद जी के पास आए, संस्कृत में बातें कर रहे थे। प्रभुपाद ने पूछा कि वो बता सकते हैं कि परम भगवान कौन है, उसमें अटक गए वो मायावादी चले गए। प्रभुपाद ने एक नए भक्त को बुलाया, बताओ भाई कौन है एक परम भगवान, एक छोटे बच्चे को पूछा, उन्होंने कहा कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, सरलता ही वैष्णवता है, जब तक सरलता नहीं आएगी जब तक कपड़ भरा रहेगा, जब तक हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति रहेगी, जब तक ये सोचेंगे अच्छे कुल में जन्म लिया, हम ब्राह्मण परिवार के हैं या हमने बहुत क्वालिफिकेशन हासिल कर लिए हैं संसार में, तो इसका मतलब माया में पड़े रहेंगे, संसार में फंसे रहेंगे, कृष्ण भक्ति करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए। हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों का अनुभव और होगा इस बात का, खुद भी जो क्वालिफाइड है मेटीरियली, अच्छे कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण परिवार में, जी जन्म तो हमारे पास पहले ही है, आप कौन से ब्राह्मण दीक्षा की बात कर रहे हो, ये उतारना पड़ेगा हमें। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, कोई सुंदरता का भी बड़ा गर्व करता है या बहुत अधिक धन है वो भी बड़ा गर्व कर रहा है ना, सौंदर्य का प्रदर्शन कर रहा है और आधा दिन वो आईने के सामने ही दर्पण के सामने बिता रहा है। पुरुष हो या माता है, आजकल सब जो है दर्पण के सामने खड़े हैं, है ना, और अपना केश सवार हैं, लावण्यम केश धारणम, भागवत में लिखा है द्वादश कंध में, कलयुग का लक्षण है कि इंसान की व्यक्ति की सुंदरता पहचानी जाएगी उसके बालों से, इसलिए सबसे पहले भक्त जब बनते हैं मंदिर में उसके बाल उड़ाए जाते हैं, वो पूछते हैं प्रभु हेड शेव क्यों करते हैं, इसलिए कि जितना भी गर्व है आपका केश के कारण वो सब समाप्त हो जाए। अब आप देखो अपना चेहरा, सर में बाल ही नहीं है, यू आर टकलू। तो इस तरह से वो अभिमान जो है अहंकार हमारा समाप्त होता है जब हम केश को समर्पित कर देते हैं केशव के चरणों में, हरि हरि। तो केश को समर्पित करना हमें केशव के चरणों में, याद रखें, घुंघराले बाल हो, लंबे बाल हो, शाहरुख खान की तरह हो, किसी की तरह भी हो बाल, अमिताभ की तरह हो, लेकिन सारे बाल जो है क्या है, बिल्कुल ब्लैक स्टूल है, गंदगी है, शरीर से इसको अलग करना जरूरी है। तो इस प्रकार सुंदरता, बहुत अधिक धन है ना, हमने अभी इतना दान दिया है ना, हमारा नाम क्यों नहीं लिखा गया यहां पे, हमारा नेम प्लेट होना चाहिए ऑल्टर के साथ, मैग्निफाई किया जाए, हमने इतनी सेवा की, कोई पूछ भी नहीं रहा है, कोई माला भी नहीं पहना रहा है ना, हमने पूरा प्रसाद स्पॉन्सर किया है, भक्त लोग खा क्यों नहीं रहे हैं, स्पॉन्सर किया है तो जबरदस्ती खाना पड़ेगा, बताइए, हमने स्पॉन्सर किया है लेकिन भक्त को थोड़ा खरीद लिया हमने प्रसाद से, बताइए ये बात। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्ति के अंग हैं 64 भक्ति अंग हैं, कोई मंदिर बनाता है व्यापारी दान देता है और वो मंदिर बनाने के लिए दान देता है, लेकिन उसके बाद जो भक्त भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति का लाभ उन भक्तों को मिलेगा, वो सारा भक्ति का लाभ उस व्यक्ति के लिए नहीं है कि हाँ देखो मैंने दान दिया 10 करोड़ दिया इस मंदिर के निर्माण के लिए, या जितनी भी भक्ति हो रही है अर्चन पूजन वंदन ये सब जो है मेरे कारण हो रहा है, आप सुन रहे हैं, इसका सारा श्रेय मुझे जाता है, इसका मतलब माया है, इसका मतलब वो क्या है कि फंस गया, फिर वो जो दान दिया उसने वो दान जो है वो निरर्थक हो जाता है। इसलिए भगवान जो है नारद भुक्ति सूत्र में भी नारद जी कह रहे हैं भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं लेकिन भक्त के हृदय में जो अहंकार आ जाता है इन कारणों से, तो भगवान उसको कभी सहन नहीं करते। ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी बाधा है, और इन कारणों से अभिमान आता है। एक सरल सा भक्त जो बनता है, कोई सरल सा होता है, गांव से आया है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा धन नहीं है उसके पास, कुरूप दिख रहा है, तो क्या करेगा वो? उसके बाद एक ही उपाय रह गया, भजन करना, अगर उसका भजन करने का उद्देश्य है तो, है ना? क्योंकि जिसके पास योग्यता है उसके पास उतना ही खतरा है। इसलिए जो कीर्तन करते हैं, इसलिए जो प्रवचन देते हैं, इसलिए जो प्रचार करते हैं, उनके लिए ज्यादा खतरा होता है माया का। हरी हरी, ये फैक्ट है। लेकिन जो सरल सा भक्त है, जो चरणामृत बांट रहा है, बेचारा वो लेक्चर नहीं दे सकता है, कीर्तन नहीं कर सकता है, वो सिर्फ चरणामृत बांट सकता है, कोई उसको पूछेगा ही नहीं, अपना भजन करते रहो, है कि नहीं? उसकी माला चलती रहेगी, माला रुकेगी नहीं लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए। लेकिन जो इस प्रकार जो भौतिक सुविधाएं हो जाती है हमारे पास बहुत, जिसको हम झेल नहीं पाते हैं, पचा नहीं पाते हैं, तो ये सब भक्ति मार्ग में बाधाएं बन जाती हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर ए दमाना मदपमान, ये सब नशा है, इंटॉक्सिकेशन है। तो इससे हमें बचना है, हम सबको बचना है, है ना? नल कुबेर मणिग्रीव की कथा तो आप जानते ही होंगे। नल कुबेर मणिग्रीव जो है वो कुबेर के पुत्र थे, और बहुत धन था उनके पास, स्वर्गलोक का सुख लूट रहे थे वो, और मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे वहां के अप्सराओं के साथ, नग्न बिल्कुल बिल्कुल बेशरम निर्लज होकर स्नान कर रहे हैं वहां पर, वो होश ही नहीं है, खूब पिया हुआ है उन्होंने वहां का सोमरस, है ना, पूछ चढ़ाया हुआ है, तो दाएं बाएं भी नहीं देख रहे क्या हो रहा है। नारद जी वहां से आ गए, नारद जी ने कहा व्हाट इज दिस नॉनसेंस, है ना, ये क्या बकवास है, है ना, यहां पर स्नान कर रहे हैं कुबेर के पुत्र होकर, इतने बड़े देवता के पुत्र होकर ये लोग यहां नग्न स्नान कर रहे हैं स्त्रियों के साथ, बेशरम। तो नारद जी जो है उनके ऊपर बड़ा सोचे कि इनके ऊपर विशेष कृपा करनी, और नारद जी को देखकर भी जो है उन्होंने अपने आप को नहीं ढका, स्त्रियां तो ढक ली अपने शरीर को, लेकिन जो थे वहां पर नलकुंवर मणिगिरी वो तो वैसे के वैसे ही खड़े हुए थे। तो फिर जो है नारद जी ने कहा अब इनका कुछ करना पड़ेगा। ये होती है वैष्णव कृपा। वैष्णव कृपा का मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा प्रवचन दे रहे हैं, आप बहुत अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, नहीं। वैष्णव का मतलब वास्तव में जब वैष्णव की डांट सुनने को मिलती है वो है असली कृपा। वैष्णव की डांट पड़ी है किसी? कितने भक्तों को वैष्णव की डांट पड़ी है? हाथ खड़ा करिए, देखा? तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं जिनको डांट पड़ रही है। तो और भी प्रार्थना करिए राधिका रमण से कि हमें रोज डांट पड़े, इतनी डांट पड़े हमें, इतनी डांट पड़े कि सारा अहंकार समाप्त हो जाए हमारा। वैष्णव नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा हमें, बताइए? हम सबको कड़वी दवाई की आवश्यकता है, स्ट्रांग इंजेक्शन की आवश्यकता है। जब एनेस्थीसिया दिया जाता है किसी मरीज को उसके ऑपरेशन के लिए, लोकल एनेस्थीसिया, तो इंजेक्शन इतना बड़ा होता है उसका, एनेस्थीसिया जब जाते हालत खराब हो जाती है। एक बार अगर एनेस्थीसिया काम नहीं किया तो वो भी अपने आप में बहुत आपको कष्ट देगा। एक बार हमारा कोन हो गया था पांव में, और हम एक स्किन इंस्टीट्यूट में गए थे, गलती से हमने उसका ऑपरेशन करवा लिया, हमें पता नहीं था उसका और भी कुछ सोल्यूशन हो सकता है। तो उसे एनेस्थीसिया जब दिया, लोकल एनेस्थीसिया पांव में, तो हमें लगा शायद दर्द नहीं होगा, उससे इतनी पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई, हालत खराब हुई, पूरा शरीर कांपने लगे, सिर्फ चिल्लाए नहीं, बस हाथ पांव कांपने लगे, ऐसे 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 ऐसे। उसके बोलते हैं अब देखिए आपका एनेस्थीसिया दे दिया हमने, अब आपका हम ये कोन निकालेंगे, पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा पता तो चल गया, और पता चल रहा है, हालत खराब कर दी और आप कह रहे हैं पता नहीं चलेगा, बताइए। एलेक्ट्रोक्यूटर से उसने जो है निकाला कौन, उसमें धुआं निकल रहा है पांव में से, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, पता चल रहा है आपको? नहीं पता चल रहा है। मैंने पता तो चल गया, और क्या पता चलना है? ऐसे में कृष्ण को याद करना बड़ा कठिन कार्य है, गोविंद को याद करना बहुत कठिन, इतना भी मतलब स्ट्रांग इंजेक्शन नहीं होना चाहिए कि आप कृष्ण को ही भूल जाए। तो इस तरह से जो है फिर मतलब क्या कह रहे थे हम, कहां पे थे? हाँ हाँ, नलकुंवर मणिगिरी। तो नलकुंवर मणिगिरी को स्ट्रांग इंजेक्शन की जरूरत थी नारद मुनि से। नारद ने कहा जाओ ब्रज में, जाओ जन्म, ब्रज में जन्म लेने का अवसर दे दिया, बताओ, लेकिन बनना पड़ेगा पेड़, वस्त्रहीन रहोगे तो पेड़ बनना पड़ेगा, समझ लो अच्छी तरह से। इसलिए क्या इंग्लैंड जाते ना, वहां पेड़ बहुत नजर आते, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है वहां पर, हरियाली है चारों तरफ, उसका कारण ये है। विदेशों में हरियाली इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि वहां वस्त्र ही कम पहनते हैं लोग, तो पेड़ बन जाओ। तो इस तरह से 100 दिव्य वर्षों के लिए नंद महाराज के घर में आप दोनों खड़े रहेंगे, और जब भगवान अपनी लीलाएं प्रकट करेंगे नंद महाराज के घर में, उस समय आप सबका उद्धार होगा दोनों का। तो नलकुवर मणिग्रीव जो है पेड़ बन गए बेचारे, पश्चाताप करते रहे, पश्चाताप करते रहे, है ना, खड़े रहे, पेड़ बन के खड़े रहे। और जब भगवान ने दर्शन दिया दामोदर लीला के समय और वृक्ष गिर गए, दोनों प्रकट हो गए देव स्वरूप में, तो भगवान ने जानते क्या बोला? भगवान ने कहा ये मत सोचना कि तुम्हारे भजन के कारण मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं, मैं दर्शन दे रहा हूं क्योंकि नारद जी ने कहा, नारद जी ने क्योंकि वचन दे दिया, इस कारण से मैं जो है दर्शन दे रहा हूं आपको, आपकी कोई योग्यता नहीं है, जाओ भजन करो, वापस जाओ स्वर्ग लो। तो इस तरह से जो है नारद जी ने विशेष कृपा दिखाई उन मदोन्मत जो नशे में थे, पूरा वैसे भी नशे में थे और वैसे भी नशे थे, धन का कारण नशा। तो धन जो है ये सब बुराइयां लेकर आता है, संपत्ति ऐश्वर्य ये सब जो है क्या बुराइयां लेकर आते हैं, लिखा है शत्रुता चिंता मानसिक शोक गर्व कलह की वृद्धि ये सब होती है। देखिए ये सब समस्या है, इसलिए जो धनाढ्य व्यक्ति होते हैं, अमीर से अमीर व्यक्ति होते हैं, वो बेचारे कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, बीमारियां लगी हुई हैं, दुनिया भर की सारी बीमारियां लगी हुई हैं, और रात को भी जागे हुए हैं, दिन में रात को सोने के लिए नींद की गोलियां खाते हैं, ये हालत है सच में। इसलिए हम लोग बाहरी दृष्टि से देखते हैं, अगर वो हो ये तो बड़े सुखी होंगे, इनके पास बहुत बड़ा मकान है, बहुत पैसा हो। भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए कि जब भक्त जाते हैं प्रचार में, घरों में जाते हैं या किसी धनाढ्य व्यक्ति के पास जाते हैं, उनके धन से उनके ऐश्वर्य से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। विशेर अन्न खाए ले दुष्ट होए वे मन, मलिन मन ना होए वे कृष्णेर स्मरण। विषय व्यक्ति के घर जा रहे हैं और खूब खा रहे हैं ये सोच के कि प्रसाद पा रहे हैं, नहीं, प्रसाद के नाम पे हम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते हैं। ठाकुर भक्तिरों ने लिखा एक जगह 1896 या 1885 के आसपास होगा, सज्जन तोषणी में वो लिख रहे हैं कि कुछ तथाकथित वैष्णव गंगा जी के तट पर इकट्ठे हो जाते हैं, और वो वैष्णव होते नहीं, देखने में लगते हैं वैष्णव, वो सोचते हैं हम आज इस घर में जाएंगे, आज उस घर में जाएंगे, वहां मालपुआ मिलेगा, वहां पर लुची चीनी मिलेगा, वहां मिष्टी दोई मिलेगा, और साथ में दक्षिणा भी मिलेगी, हरी हरी। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखा है सज्जन तोषणी में कि वो फिर जब इस प्रकार इस इच्छा से जब जाते हैं, वो फिर क्या है, कर्मकांडी बन जाते हैं, वैष्णव नहीं है वो, क्योंकि वैष्णवों के लिए दक्षिणा की कोई प्रथा नहीं है। दक्षिणा अगर होती है तो ठाकुर जी की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है माया का प्रकोप है, माया का प्रभाव है, माया हमें कई तरीके से जो लपटने का प्रयास करेगी, और हम फंस गए तो कृष्ण भक्ति में रुक जाएंगे, भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ेंगे। नाम के बल पर पाप करना, इसी तरह से नाम के बल पर संग्रह करना, अति संग्रह करना, अत्याहार करना, ये सब जो है भक्ति मार्ग के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक। आप देखिए गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के जीवन में क्या उनका प्रणाम मंत्र है, नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ते विप्रलंबर साम बोधे पादाम बुझाए थे, है ना, ऐसी कुछ है ना। तो श्रील गौर कृष्ण बाबा जी महाराज देखिए इतने विरक्त थे, हम लोग उतने विरक्त नहीं हो सकते हैं अभी, लेकिन सुन तो सकते हैं प्रेरणा के लिए, पब्लिक लैटरिन में भजन कर रहे हो, है ना, और दिन रात भजन कर रहे हैं, और एक व्यक्ति आया उनके पास कहने के लिए कि मैं गृहस्थ हूं, मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूं, मेरा अपना व्यापार है। तो बाबा जी महाराज ने कहा ऐसा करो, सब कुछ छोड़ के आप नवदीप में आ जाओ, घर व्यार त्याग दो, व्यापार त्याग दो, बिजनेस त्याग दो, घर वालों को त्याग दो, आओ मेरे पास बैठो, यहां मेरे साथ भजन करो। जैसे उसे सुना उसी समय वहां से भाग गया वो। तो बाबा जी महाराज जो है चाहते ही नहीं थे ऐसे लोगों के आसपास मंडराएं फालतू लोग, ये होता है वैष्णव की कृपा, है ना। भाई एक और साथ में एक और पब्लिक बाथरूम था वहां पे, उसमें एक और सो कॉल्ड एक और था एक बाबा जी, वो आके बैठ गया, वो भी उस तरह से नकल करने लगा बाबा जी महाराज। बाबा जी महाराज बोले जाओ भक्तों के संग में रहो, मैं जानता हूं तुम रोज कहां से आते हो रात को। बाबा जी महाराज ने पोल खोल दी उसकी, फिर वहां से वो भी भाग गया, 3 दिन के बाद गायब भी हो गया। क्योंकि पब्लिक बाथरूम में बैठकर जप करना कोई साधारण बात नहीं है। जब तक नाम में रुचि नहीं होगी ऐसी अवस्था में कौन जप कर सकता है बताइए? कोई कर सकता है? केवल जो परमहंस है, केवल जिनको नाम में रुचि है, वो ही ऐसी परिस्थिति में भगवान के नामों का भजन भी कर सकते हैं। और भागवत में क्या लिखा है, दशम स्कंध के 28वें श्लोक के 28वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान? बता रहे यस्याहम अनुग्रणामी हरिष्यते तदनम शनै। क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ यह है कि जिसके ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूं, अगर मैं वाकई में किसी के ऊपर कृपा करता हूं तो सबसे पहले क्या करता हूं, मैं जो है उसके सारे धन को धीरे 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 सब कुछ छीन लेता हूं। हरिष्य तदनम शनै ततो धनम त्यजंती अस्य स्वजन दुख दुखितम। और फिर क्या होता है, उसके रिश्तेदार, उसके परिवार के सदस्य, उसके मित्र जितने भी हैं, उसकी गरीबी को देखकर उसको छोड़ के भाग जाते हैं। आप में से कितने भक्त हैं यहां पर जिनके आपके पुराने मित्र अभी भी हैं? सर सर बताइए, पुराने मित्र अभी भी मेंटेन किए हुए हैं आपके साथ में, अभी भी मिलते हैं आपसे? देखा कितने कम है, देखिए, है ना बात सही? भागवत का श्लोक सही बोल रहा है। तो इसलिए जब हम लोग भक्ति में लगते हैं, जब कृष्ण का नाम लेना शुरू करते हैं, जब हरे कृष्णा वाले बन जाते हैं, तो हमारे अपने रिश्तेदार मित्र जो हैं वो सब दूर हो जाते हैं। उससे तो इनके बाद जाने का क्या फायदा, ये हरे कृष्णा करेंगे, हमें कोई लाभ नहीं है, भौतिक लाभ नहीं है। तो जितने भी जो सो कॉल्ड दोस्त थे आपके, सो कॉल्ड रिश्तेदार थे, सब पीछे भाग जाएं। और आज आप वास्ते बाद दोबारा धनाढ्य हो जाइए, आज फिर से व्यापारी बन जाइए, आज से फिर से कमाने लग जाइए पैसा, तो सब जो है कीड़ों की तरह, चींटों की तरह मंडराएंगे आसपास आपकी प्रशंसा, वही लोग आपकी प्रशंसा करना शुरू कर देंगे। तो ये जो है संसार जो है बिल्कुल स्वार्थी संसार है, लोग अपने इंद्र तप्तर तर्पण के लिए जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो इन बातों का हमें बड़ा ध्यान रखना है। हम देखते हैं कि देखिए पांडवों के जीवन में भी जो है भगवान ने जो है बहुत सारे कष्ट दिए, है कि नहीं? भागवत के प्रथम स्कंध में के एक श्लोक के तात्पर्य विश्वनाथ जी ठाकुर बता रहे हैं कि ये जो कष्ट जो होता है ये भगवान के द्वारा दिया जाता है भक्तों को। जिस तरह से एक कमल का फूल है उसकी पंखड़ियां धीरे धीरे गिरने लग जाती हैं, उसी तरह से जो है भक्तों का जो सारा जो पाप का कर्म, पाप कर्म का फल है वो सारा नष्ट हो जाता है। कूट हो, बीज हो, अप्रारब्ध हो, प्रारब्ध हो, ये सब नष्ट हो जाता है। लेकिन प्रारब्ध नष्ट होने में समय लगता है, प्रारब्ध जो है लगभग निष्ठा के स्तर पर जाके नष्ट होता है प्रारब्ध, लेकिन उससे पहले जितने भी ये स्टेजेस हैं, कूट, बीज और अप्रारब्ध, ये सारे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भक्तों को कष्ट क्यों उठाना पड़ता है, पांडवों को कष्ट क्यों उठाना पड़ा? हमारे गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा एक बार बताया था, उनका स्टेटमेंट है, सुनिए। मेटेरियल कंफर्ट इज लाइक अ कॉफिन फॉर अ डिवोटी। कॉफी नहीं, मेटेरियल कंफर्ट इज लाइक अ कॉफिन फॉर अ डिवोटी, अ प्लेस वेयर यू कैन बरी अ मैन। जहां पर आप व्यक्ति को दफनाते हो, तो ये मेटेरियल कंफर्ट क्या है, ये बिल्कुल कब्र के समान है। इसलिए कंफर्टेबल सिचुएशन में जब भक्त रहते हैं, समझ लीजिए कि भक्ति उनकी रुक गई, प्लेटफॉर्म में ही इंजन नहीं है उस ट्रेन में। एसी कोच में बैठे हैं, फर्स्ट क्लास एसी कोच में, इंजन ही नहीं है। गाड़ी में बैठे हैं, हाँ जी हम इस्कॉन में हैं, हम इस्कॉन में सेटल हो गए, है कि नहीं? कई बार ये भी धारणाएं रहती है भक्तों की, हम सेटल हो गए हैं क्योंकि हम पुराने हो गए हैं, 10 साल 20 साल हो गए हमें, अब हमें कोई हिला नहीं सकता। अब सो रहे हैं, क्योंकि इतना पावर पोजीशन हो गया आपके पास प्रचार के कारण कि आपको हिला नहीं सकता है। तो ये सब जो है ये बहुत भयानक जो है माया का प्रभाव होता है। और जब तक हम ऐसे कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेंगे, भक्ति में आगे बढ़ना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। इसलिए विश्वनाथ जी ठाकुर कह रहे हैं, अ मैच्योर डिवोटी रिकॉग्नाइजेस द सुपरफिशियली गुड एंड बैड कंडीशंस ही एनकाउंटर्स एज अ साइन ऑफ डायरेक्ट गाइडेंस ऑफ द लॉर्ड। क्या मतलब इसका? जो परिपक्व जो होता है भक्त, वो समझ जाता है, पहचान लेता है कि जो मुझे अच्छा हो रहा है मेरे साथ या बुरा हो रहा है, ये वास्तव में क्या है, ये स्वयं भगवान मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, इसके द्वारा ये जो कष्ट दे रहे हैं मुझे, इसके द्वारा मुझे शिक्षा दे रहे हैं। तो उस शिक्षा को समझ पाता है, उस कष्ट में उस शिक्षा को स्वीकार करता है ऐसा भक्त। ऐसे कष्ट में वो भक्त जो है उस शिक्षा को समझ पाता है कि हाँ ये मेरी भलाई के लिए है, इसी में मेरा लाभ है। और विश्वनाथ जी ठाकुर एक और उदाहरण देते हैं, जिस तरह से एक पिता जो है अपने बच्चे को खेलता हुआ देखता है और उसको खेलता हुआ देखकर उस खेल को रोकता है, जाओ बेटा स्कूल जाओ, और नहीं मानता बच्चा तो उसको थप्पड़ भी मारा जाता कई बार, है कि नहीं, और बच्चा रोता है और रोते रोते स्कूल जाता है। याद है वो दिन? आपको, आप में से कितने भक्त हैं, कई प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे हम, आप में से कितने भक्त हैं जो बचपन में पहली बार जब स्कूल गए थे तो रोए थे? हाथ खड़ा करिए, सच सच बताइए, झूठ मत बोलिएगा। कुछ लोग हंसते हुए भी गए थे, है ना, लेकिन जो है याद भी नहीं होगा। याद नहीं होगा तो आप घर वालों से पूछिए, पेरेंट्स आपको बताएंगे, है ना, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ कि याद नहीं है। तो रोए होंगे सब लोग। तो यही विश्वनाथ जी ठाकुर कह रहे हैं कि पिता जानते हैं उस बच्चे के लिए है क्या अच्छा, इसलिए उसको स्कूल भेजना अच्छा है, तभी वो पढ़ेगा लिखेगा, ट्रेन होगा, एजुकेट होगा, घर में रहेगा तो बिगड़ जाएगा, सीखेगा क्या। तो इस तरह से जो है कई बार जो है भगवान भी अपने भक्तों को कष्ट देते हैं। तो ये बता रहे विश्वनाथ जी ठाकुर, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ लव फॉर देम, द सुप्रीम लॉर्ड इज स्ट्रिक्ट विद हिज डिपेंडेंट्स। जो आश्रित है भक्त, भगवान उनके साथ बहुत सख्त होते हैं। इसलिए हम सब तैयार रहें। आप में से कितने भक्त तैयार हैं? क्या प्रश्न तो पूछने दीजिए। इसका मतलब आप लोग समर्पित हैं, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है। कोई भी प्रश्न हो हम तैयार। आप में से कितने भक्त तैयार हैं कि आगे और कष्ट मिले आप? हाँ, ये अब देखिए। तो हाँ, आप चाहें ना चाहें, अगर आप शुद्ध भक्ति चाहते हैं तो कष्ट तो आएगा ही, और कष्ट कम नहीं होगा ना, अलग बढ़ने वाला है। तो अब बताइए आप में से कितने भक्त तैयार हैं उसके लिए? देखा, तो ये जो है डिग्री जो है कष्ट का बढ़ता रहेगा। तो कैसे बढ़ेगा? जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना जो है हमें कष्ट मिलता रहेगा, उतनी परीक्षा होगी कठिन। डरिए मत, भक्ति से भागेगा मत। ये सब सुन के अभी हमने बताया, वो कोन वाला एग्जाम्पल दिया, उन्होंने जो इंजेक्शन लगाया हमें सो कॉल्ड एनेस्थीसिया, उसकी उससे हालत खराब हो गई हमारी, पूरा शरीर कांपने लगा। ऐसा इंजेक्शन ठाकुर जी नहीं देंगे हमें। हम इंजेक्शन ऐसा देंगे जिसको हम लोग सहन करने की कहीं ना कहीं क्षमता हो, हमारी संभावना हो, है ना। इसलिए जब भक्त प्रारंभ में आते हैं, खासकर जब येलो क्लोक्स में होते हैं, न्यू भक्ता प्रोग्राम में, सो दे हैव अ नाइस टाइम, बड़ा आनंद आ रहा है, नाचो गाओ, भक्त संगे करो संकीर्तन, है ना, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, बड़ा आनंद आ रहा है प्रभु जी भक्तों के संग में। लेकिन धीरे 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 धीरे, इसलिए भक्तों को सहन करना पड़ेगा। हरे कृष्णा, भक्तों को सहन करना पड़ेगा, या तो माया को सहन करो या भक्तों को सहन करो। भक्तों को सहन करेंगे तो कृष्ण मिलेंगे, माया को सहन करोगे तो माया मिलेगी। बताइए क्या चाहिए आपको, बताइए। अरे पक्का नहीं है? कृष्ण यानी भक्तों को सहन करेंगे, तैयार है? हमें से कितने भक्त तैयार हैं भक्तों को सहन करने के लिए? तो भक्त तो इतने आसानी से आपको छोड़ेंगे नहीं। और खासकर जो मैनेजमेंट में है उनके लिए ऊपर तो बड़ी विशेष कृपा है ठाकुर जी की, है कि नहीं। जो बेचारे हमारे जो मैनेजर्स हैं इस काम में, जिनको बड़े बड़े मंदिर चलाने पड़ते हैं या मंदिर चलाने पड़ते हैं, बस बस आनंद ही आनंद है। और भक्तों की बड़ी कृपा होती है ऐसे मैनेजर्स के ऊपर, है ना। किसी ने बताया, सार्वभौम प्रभु ने बड़ा अच्छा बताया हमें, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट का मतलब जानते हैं आप क्या है? बताइए क्या है? प्रेसिडेंट में तीन शब्द हैं, एक बीच में अक्षर है, बाकी दो शब्द शब्द ही कह लो। पहला है प्रेस, उसके बीच में आई, और आखिर में डेंट, इसको कहते हैं प्रेसिडेंट। तो चारों तरफ से आपको हालत खराब हो जाएगी आपकी। अब सोचेंगे यार क्या हो रहा है, अब बार बार राधिका रमन जी के पास जाएंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। यही तो राधिका रमन चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें हृदय से, रोएं, गिड़गिड़ाएं असहाय अवस्था में, जैसे एक बच्चा अपने माता के सामने रोता है, इसी तरह। तभी तो प्रभुपाद ने बोला, क्या ये जो चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र मस्ट बी व्हाट जेन्युइन क्राई ऑफ द चाइल्ड फॉर द मदर हरा, जेन्युइन क्राई। ये नकली नहीं आंसू बहा रहे हैं ऐसे दिखाने के लिए कि हम जो है रो रहे हैं, भक्ति बहुत बढ़ गई हमारी, साइजिया टाइप के हो गए, आंखों से पानी बह रहा है, हृदय से कोई है ही नहीं भावना। हृदय से रोना होगा, हृदय से कंदन करना होगा असहाय अवस्था में। जब भगवान देखते हैं कि असहाय अवस्था में ये हृदय से कंदन कर रहा है और माम एकम शरणावज, केवल मेरी शरण में आना चाह रहा है, केवल मेरी शरण लेना चाह रहा है, तब भगवान जो है तब जाके उसके ऊपर कृपा करते हैं। और ऐसे में कृष्ण भक्ति जो है वो हमारी बढ़ती है। देखने में ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत कष्ट हैं, ये भक्त ने ऐसा कर दिया, वो भक्त ने ऐसा कर रहा है, ये भक्त ऐसा कर रहा है मेरे साथ, ये भक्त खिंचाई कर रहा है, ये भक्त पॉलिटिक्स कर रहा है, ये भक्त बुराई कर रहा है। बहुत कुछ होने वाला है, तैयार रहिए। धीरे धीरे आप सबको भी मैनेजर बनना है टेम्पल का, आप सबको भी मंदिर चलाने होंगे, बड़ा आनंद आएगा। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्वपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। लेकिन संकीर्तन की विजय हो, प्रसाद की विजय हो, भगवान के दर्शन की विजय हो, क्योंकि ऐसे में तो आपको शायद इतना कष्ट ना हो। लेकिन कष्ट होता है 9 बजे के बाद, जब हमारी दैनिक सेवाएं शुरू होती है। इस वाले राधा गोविंद महाराज ने बड़ा अच्छा बताया था प्रवचन में, भक्त की पहचान होती है 9 बजे के बाद। महाराज ने प्रवचन में बड़ा अच्छा बताया कि भक्त की पहचान होती है 9 बजे के बाद। कि 9 बजे के बाद तो रूटीन शेड्यूल चल रहा है, सब लोग बैठे ही हैं, सब लोग जब कर रहे हैं, हम भी जब कर रहे हैं, प्रसाद तक सबसे सही चलता है। प्रसाद के बाद जो है महाभारत शुरू होता है। तो इस प्रकार जो हम देखते हैं, पांडवों को भी कष्ट हुआ, प्रहलाद महाराज को भी कष्ट हुआ, भीष्म पितामह को भी कष्ट हुआ, जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं श्रीमद् भागवत में देख लीजिए, सबको कष्ट हुआ है कि नहीं? उनकी डिग्री का कष्ट देखिए आप। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा गया, फिर भी वो कह रहे हैं ठीक है मैं शरीर छोड़ देता हूं आपके उद्धार के लिए, आपको कुछ ना हो मैं खुद ही गंगा जी में डूब जाता। तो हरिदास ठाकुर का लेवल वो है। इसलिए भगवान जो है हरिदास ठाकुर के माध्यम से दिखा रहे हैं, देखो मेरे भक्त का गौरव देखो, इसको 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा गया लेकिन फिर भी इसने हरिनाम नहीं छोड़ा, खंड खंड कर दो मेरे शरीर को लेकिन फिर भी मैं हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। ये है वास्तव में परीक्षा। हम थोड़ा सा समस्या होती है भक्तों के समाज में, हम भाग जाते हैं इधर उधर, नहीं कष्ट को सहन नहीं कर पाते हैं। त्रिनाद अभी सुनी चे न तरोर अभी सही सुना अमानी न मान दे न कीर्तनी सदाहरी। एक बड़ा अच्छा कोट महाराज का याद आ रहा है। महाराज कहते हैं ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा बट प्लीज पे द प्राइस ऑफ ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस। हमारे महाराज ने एक बार बोला था एक लेक्चर में, ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा बट प्लीज पे द प्राइस ऑफ ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस। तो कहने का मतलब है कि हम सदा अगर कीर्तन करना चाहते हैं ये हमारे अंदर गुण आने चाहिए। वृतासुर में ये गुण है, वृतासुर तैयार है कि उनको मारा जाए, वृतासुर चाहता है कि इंद्र का प्रहार उसके ऊपर हो, वृतासुर ये नहीं चाहता है कि वो इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त कर ले और स्वर्लोक की प्राप्ति हो जाए जहां फिर सड़ना पड़े दोबारा। प्रभुपाद लिख रहे ना इंद्र जो है स्वर्लोक की प्राप्ति करते हुए भी इस भौतिक संसार में उनको सड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये इंद्र के पद का समय है जब तक तो उनको वो राज्य करना पड़ेगा स्वर्गलोक में। लेकिन वृतासुर जो है शरीर छोड़ने के बाद ही तत्काल ही भगवान के धाम जाने वाले हैं। इसे बोलते हैं मारो मुझे, मारो जल्दी मारो, हमें नहीं चाहिए स्वर्गलोक। तो वृतासुर जो है इस तरह का भाव होना चाहिए कि युद्ध भूमि में भी वृतासुर जो है भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। कितना अच्छा अवसर दिया भगवान ने वृतासुर को, इंद्र से अधिक भगवान जो है वृतासुर के ऊपर ज्यादा प्रसन्न है। वृतासुर से भगवान बहुत प्रसन्न है और वृतासुर जो है भगवान भी बोल रहे हैं कि वृतासुर को किसी से द्वेष नहीं है, वृतासुर जो है किसी के प्रति शत्रुता की भावना नहीं रखता है। तो वृतासुर जो है इंद्र का शत्रु बना है कि नहीं, इंद्र के लिए वृतासुर शत्रु बना, लेकिन वृतासुर जो है उसके हृदय में किसी के प्रति शत्रुता की भावना नहीं है। तो इस प्रकार के गुण हमारे अंदर जागृत होने चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात विश्वनाथ जी ठाकुर जो हैं इसी श्लोक के यस्याहम अनुगृहणामी जो श्लोक है उस श्लोक के टीका में बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि भगवान जो है भक्तों को कष्ट क्यों देते हैं, क्या कारण है इसका। भक्तों को भगवान इसलिए कष्ट देते हैं कि रात्रि के समय सूर्य का प्रकाश अच्छा लगता है, रात्रि के समय सूर्य का प्रकाश बड़ा अच्छा लगता है, गर्मी के समय ठंड बड़ी अच्छी लगती है, ठंडा पानी बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं। और इसी तरह से ठंड के मौसम में गर्म पानी अच्छा लगता है और अंधेरे समय अंधेरा जो होता है तो उस समय हमें लैंप लाइट यानी कि जो रोशनी है बहुत अच्छी लगती है, और भूखे व्यक्ति को प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, भोजन बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से जब कष्ट होगा हमारे जीवन में तब हम वास्तव में सुख की अनुभूति कर पाएंगे, आनंद क्या होता है इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि भक्त जो है भक्ति को बिल्कुल सस्ता ले ले। इसलिए इस भक्ति के महत्व को समझाने के लिए, भक्ति के सिद्धांतों को समझाने के लिए कि भक्ति है क्या, भक्ति कितनी बहुमूल्य चीज है, इसलिए भगवान जो है भक्तों को कष्ट देते, तभी तो वो याद करेगा। इस तरह से भक्त जो है भगवान के ऊपर सदैव निर्भर रहेगा, और ऐसा निर्भर रहते हुए जब अपना जीवन बिताएगा तो अंत काल में शरीर छोड़ते ही वो सामने कृष्ण को पाएगा। लेकिन भगवान अगर भक्तों को सुख सुविधा दे दें जो उनके लिए बिल्कुल भी रंच मात्र भी मुश्किल नहीं है, है ना, क्षण भर में भगवान जो है हमें दे सकते हैं, लो भाई इनको बना दो नित्य धाम को, करोड़पति बना दो, तो क्या गारंटी है कि नित्य धाम आप सबके समक्ष बैठे होंगे इसी वस्त्र में, बताइए आप, सच बात है कि नहीं नित्य धाम, बताओ, या कोई और भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, रवि लोचन भी हो सकते हैं, या मैं भी हो सकता हूं, या आप में से कोई भी हो सकते हैं कि भगवान हमें सुख सुविधा प्रदान कर दें। आपको लग रहा है नहीं नहीं ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं, हम धन आएगा तो प्रचार में लगाएगा। अच्छा, तो इसलिए युक्त वैराग्य जो है वास्तव में है नहीं सबके लिए, युक्त वैराग्य के नाम पर अपने आप को धोखा नहीं दे सकते हम, है ना। निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य मुच्यते, उसका संबंध कृष्ण से होना चाहिए तब तो वो युक्त वैराग्य है। इसे कई बार होता है कि हम लोग फोन दे देते हैं, महंगे महंगे फोन, या फोन के कई फंक्शन बहुत ज्यादा है, कौन क्या कर रहा है पता नहीं फोन, या किसी के पास लैपटॉप है प्रीचिंग के लिए तो कौन किस साइड में बैठा है पता नहीं। तो ऐसा जब होता है जिससे जब भक्त बिगड़ने लगते हैं सुख सुविधाओं से, तो भगवान क्या करते हैं उन सुख सुविधाओं को छीन लेते हैं, भक्तों से भी छीन लेते हैं, तो फिर वो समझते हैं, तब उसका महत्व समझते हैं, ओहो मैंने गलती की थी, मैंने ये गलती की थी, सुख सुविधा का, भगवान के ऐश्वर्य का, भगवान की संपत्ति का दुरुपयोग किया था, इसलिए भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। ये भगवान की कृपा है, ये विशेष कृपा होती है, भगवान की अवित की कृपा है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए मंदिर में या अपने घर में भी, हमें भगवान की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां पे बिजली की आवश्यकता नहीं है वहां पंखा बंद किया जाए, लाइट बंद किया जाए, पानी अगर बह रहा है तो वहां नलका बंद किया जाए, है कि नहीं। नहीं तो क्या होगा, क्या होगा जानते हैं, पानी बंद हो जाएगा, बिजली बंद हो जाएगी, कूलर बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, फीस्ट बंद हो जाएगा, खिचड़ी खाना पड़ेगा, चारों तरफ गर्मी का प्रकोप होगा, फिर 45 डिग्री टेम्परेचर में हमें जप करना पड़ेगा। हरी हरी, हम रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं हैं जो राधा कुंड के तट में बैठे हैं इस गर्मी में भी, और ये भी नहीं पता कि पीछे शेर खड़ा है कि नहीं, हमारी वो अवस्था नहीं है, हम लोगों को प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। इसलिए हमें सुख सुविधाओं का उपयोग जो है मार्गदर्शन में करना चाहिए, भक्तों के मार्गदर्शन में करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया, क्या सिस्टम बनाया कि जो भी धनराशि आए, जो भी डोनेशन आए, जो भी काइंड डोनेशन आए, जो भी सुविधाएं आए, सबसे पहले क्या करना है, उसको हमें मंदिर में जमा करना, फिर वो मंदिर के अधिकारी जो है फैसला करेंगे हमारे लिए कि हमें क्या जरूरत है, उसके अनुसार दिया जाए, आवश्यकता के अनुसार सुविधाओं का सदुपयोग होना चाहिए भगवान की सेवा में। लेकिन अगर हम अत्याहार करेंगे इस उद्देश्य से कि हम प्रचार कर रहे हैं और उन सुविधाओं का सदुपयोग नहीं होगा, तो उन सुविधाओं में ही फंस जाएंगे और जीवन के लक्ष्य को भूल जाएंगे। तो इस प्रसंग के द्वारा हम लोग बहुत कुछ शिक्षा ले सकते हैं। ये वृतासुर की जो कथा है उनके दिव्य गुण के बारे में चर्चा हो रही है, क्या गुण है वृतासुर के पास, देखिए आप, है ना। तो यहां पर नहीं तो क्या होगा, ये सारे अवगुण हमारे अंदर आएंगे। बहुत अधिक जब धन होता है तो चिंताएं बढ़ जाती हैं कि धन को कहां संभालें, धन को कहां जमा करें, कहां इनको इन्वेस्ट करें, इतना सारा टेंशन होता है। देखिए पैसा होता है जिस व्यक्ति के पास, उसका तो जीना हराम हो जाता है कि नहीं, और उसमें भी काला पैसा हो तो और भी बुरी हालत। तो इसलिए भक्त को चाहिए कि वो सरल से सरल जीवन बिताए। जितना अधिक सरल हमारा जीवन होगा उतना भक्ति करना आसान होगा। जहां हम सुख सुविधा बढ़ाएंगे, जहां पर हम कंफर्टेबल सिचुएशन में रहने का प्रयास करेंगे, वहां जो है माला फिर बहुत कठिनाई से होती है। अब देखिए प्रभुपाद ने कहा 1971 में जब प्रभुपाद से पूछा किसी ने कि प्रभुपाद टेलेक्स मशीन आ गया इंडिया में, क्या हम इन मंदिरों में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा, प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया? प्रभुपाद ने कहा टेलेक्स मशीन आ गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे कम्युनिकेशन नहीं बढ़ेगा, भक्तों के बीच में प्रजल्पा बढ़ जाएगा। ये प्रभुपाद ने कब बोला? 72 में बोला, 71-72 में। और आज आप देखिए परिणाम, कई हमारे भक्त हैं जो प्रभुपाद की बुक छोड़कर, सच बात बता रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, प्रभुपाद की बुक छोड़कर, प्रभुपाद जी की बुक्स को ना पढ़कर सब लोग बैठे हुए साइट में बैठे हैं, कोई फेसबुक में बैठा है, कोई इस साइट में बैठा है, कोई उस साइट में बैठा है, पढ़ने का टाइम ही नहीं, कौन खोलेगा किताब, हो रहा कि नहीं हो रहा, सच बताइए आप। तो प्रजल्पा जो है टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया गया है प्रजल्पा को बढ़ाने के लिए, सीधी सी बात है। प्रजल्पा का एक बहुत ही विस्तार एक्सटेंडेड फॉर्म है क्या, ये जो हम लोग यूज करते हैं फैसिलिटी, इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए। इसलिए जो नवीन भक्त हैं, नए भक्त हैं, उनके हाथ में अगर हम लैपटॉप दे रहे हैं, कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं, नेट की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो उनके ऊपर 10 लोग होने चाहिए सुपरविजन करने वाले, नहीं तो फंस जाएंगे वो, प्रभुपाद की बुक्स कोई खोलेगा ही नहीं, भाई सब कुछ साइट में ही है। बहुशाखा अनंत बुद्धयो व्यवसायी नाम भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रतिचेतसा, जिसकी बुद्धि जिसकी चेतना भोगेश्वर में है वो कभी भी व्यवसायत्मी का बुद्धि नहीं हो सकता है। इसलिए प्रचार में भी हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। प्रीचिंग का मतलब होता है जीवात्माओं को भगवान की गुरु की वैश्यों की सेवा में लगना, लेकिन क्या होता है प्रचार में कई बार हम ओनरशिप क्लेम करते हैं, प्रचार में क्या क्लेम करते हैं हम, ओनरशिप, वो भी एक संपत्ति है, ये सारे लोग जो हैं मुझसे जुड़े हुए हैं ये मेरी संपत्ति है। फिर हम शिक्षाश्रम का श्लोक भी उच्चारण करते हैं रोज, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविधाम जगदीश कामय मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहित कीजिए। इसलिए प्रचार में भी बड़ा सावधान रहना चाहिए। सुख सुविधाएं जब प्रचार करते हैं तो सुख सुविधाएं बहुत आती हैं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा बहुत मिलता है, आपकी जनसंख्या भी बहुत बढ़ती है, अनुयायी बहुत बढ़ते हैं, इसलिए इन सब को जो है गुरु की कृष्ण की वैष्णव की सेवा में लगाना है, नहीं तो हम फंस जाएंगे, फिर हमने मार्ग को भूल जाएंगे, हम किस लिए आए थे इस आंदोलन में उस उद्देश्य को भूल जाएंगे। तो इसलिए हम सब बहुत सावधान रहें, आज के श्लोक में बहुत कुछ सीखने को है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? ऐसे समय हो गया है।
हमारा संस्था जो भजनानंदी को लिए है या गोष्ठानंदी?
बिना भजन के आप गोष्ठानंदी कैसे बन पाओगे? आप सोचोगे मैं सुबह 4 बजे चल जाऊं प्रचार में, प्रचार का कोई असर होगा? इसलिए भजन भी जरूरी है, इसलिए तो प्रभुपाद ने सुबह का प्रोग्राम बनाया, उसके आधार फिर प्रचार होना चाहिए। प्रचार का आधार है भजन, प्रचार का आधार है पवित्रता, प्रचार का आधार है शास्त्र, प्रचार का आधार है भक्तों का संग, तब प्रचार में शक्ति आएगी। ठीक है, देखिए कोई भी भक्ति मार्ग से च्युत हो सकता है, लेकिन भक्त च्युत नहीं होता है। भक्ति मार्ग से हो सकता है कुछ समय के लिए भटक जाए भक्त, लेकिन फिर भी भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं, है ना? तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। निश्चित रूप से माया बहुत प्रबल है और हम सबकी परीक्षा होगी, बहुत भयानक परीक्षा होगी। जितनी अधिक सफलता मिलती है ना, जब हमें कृष्ण भावना में या कृष्ण भक्ति में सफलता जब मिलने लगती है, इसका मतलब माया हमारी बहुत परीक्षा लेने वाली। इसलिए हमें गुरु की सेवा में वैष्णव की सेवा में बहुत नम्रता से रहना चाहिए। जो जितना अधिक नम्र रहेगा और सहनशील रहेगा वो उतना लंबा चलेगा भक्ति में। प्रभु हमारे गुरु महाराज से एक बार पूछा, वेदव्यास प्रभु ने पूछा था कि हमारी संस्था में जीवन के अंत काल तक हम कैसे रह सकते हैं, ऐसे क्या योग्यता है? तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया, प्योरिटी एंड ह्यूमिलिटी। जब तक ये दोनों है तब तक हम चलेंगे लंबा, जहां ये कम हो जाएगा वहां खतरा है। प्योरिटी एंड ह्यूमिलिटी महाराज ने उत्तर दिया कि ये गुण है हमारे अंदर होने चाहिए, जिसके आधार पर हम लोग लंबे समय तक भक्ति कर पाएंगे। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है पहले हम समझिए। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है? ह्यूमिलिटी का मतलब है अगर आप सही भी हैं और आपको कहा जाए कि आप गलत हो तो उसको स्वीकार करिए, मैं गलत हूं। समझ रहे हैं आप? हरिदास ठाकुर की क्या गलती थी फिर भी उनको मारा जा रहा है। तो कहने का मतलब है ह्यूमिलिटी का क्या होता है? ह्यूमिलिटी का मतलब यह है कि अगर हमें बताया जाए कि हम गलत हैं और हम गलत नहीं हैं फिर भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम गलत हैं। ये वैष्णवता है। तो मैनेजमेंट में थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, इतना आसान नहीं है। उसमें नेचुरल है कि थोड़ा बहुत ईगो आ ही जाता है कि अगर हम उस प्लेटफॉर्म में नहीं है, अगर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में। लेकिन मैनेजर्स अगर अपने अथॉरिटीज को फॉलो कर रहे हैं तो वो भी अपने आप ह्यूमिलिटी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को मिला हुआ है कि आप इस तरह से मैनेज करिए। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं ना कि अगर गुरु महाराज की आज्ञा के लिए मुझे नर्क भी जाना पड़े और मैं अहंकार से पीड़ित भी हो जाऊं या मुझे राजा बनना पड़े तो उसके लिए मैं तैयार हूं। गुरु महाराज की सेवा करते हुए अगर आपको अहंकार हो रहा है तो ऐसा अहंकार स्वागत है। होता नहीं है अहंकार, ऐसा दिखाई पड़ता है कि गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अहंकार हो ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसा सुपरफिशियली दिखाई देता है कि अहंकार हो रहा है, ईगो जो है मैनिफेस्ट हो रहा है। और किसको लगता है? ये जो मैनेजमेंट में नहीं है उनको लगता है। सबसे पहले तो उनको लगता है ओ ये मैनेजमेंट कर रहे हैं जी, अपना जो है पूरा पावर दिखा रहे हैं, हमारी बात सुनते नहीं है, ये अपनी बात ही बोले जा रहे हैं। ये किसको लगता है? जो सामान्य भक्त है उनको लगता है। तो इसलिए भक्तों को बहुत ही ज्यादा सहनशील जीवन बताना पड़ता है ना। हम लोग सबको सहन करना पड़ेगा। भक्ति में सहन करने का मतलब ही है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सहन करने का मीनिंग जानते हैं क्या होता है? टॉलरेंस का मतलब क्या है कि हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं, असहाय हैं। इसलिए उसका और कोई, जैसे गर्मी है, अब गर्मी के मौसम में आप सोच लो कि टेम्परेरी अरेंजमेंट कर लूंगा एसी का, लेकिन कब तक आप एसी में रहोगे? बाहर तो जाना ही पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा गर्मी में। तो कहने का मतलब इसको हेल्पलेस सिचुएशन कहते हैं। तो ऐसे हेल्पलेस सिचुएशन में और कोई उपाय नहीं रहता कि हम टॉलरेट करें, और कोई उपाय नहीं है। अब ये थोड़ा कि आपके पास कोई सिद्धि है जी हम गर्मी को सर्दी कर देंगे, ठीक। नाम में जिसकी रुचि होती है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ये रुचि होते हैं ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम जगदीश कामय मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहित। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बताया ये रुचि का स्टेज है। भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया है कि जो शिक्षाश्रम का जो चौथा श्लोक है वो रुचि का स्टेज है, जिसमें भक्त जो है ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम न कविताम व जगदीश कामय मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहित। और ये स्टेज आता है निष्ठा के बाद। निष्ठा का स्टेज क्या है? त्रिनाद अभी सुने छे न तरोर अभी सही सुना अमानी ना मान देने कीर्तनीय सुधारी। अगर ये चार योग्यता है तो इसका मतलब निष्ठा के स्टेज पे। और ऐसे स्टेज में रहते रहते रुचि आ जाएगी। आसान नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने जब रघुनाथ दास गोस्वामी को शिक्षा दी और वो शिक्षा को प्रारंभ किया, ग्राम में कथा न सुनी वे, ग्राम में वार्ता न कही वे, भालो न खाई वे और बालो न पढ़ी वे, ऐसा था ना। तो ये चार योग्यताएं हैं, पहले बताया चार, फिर क्या बताया अमानी मानद छह हो गया, फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये सब जो छह गुण जब होंगे जिसके पास होंगे उसके बाद जो है फिर कोई राधा कृष्ण का मन से चिंतन कर सकता है। फिर महाप्रभु कोट करते हैं त्रिनाद अभी सुनी छे न थरोर अभी सहे सुना। तो शुरुआत होती है जीवा को नियंत्रण करने से, ग्राम्य कथा न सुनी में ग्राम्य वार्ता न कही में, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है। और धीरे 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 फिर ये और योग्यताएं आनी चाहिए और तब जाके जो है उस लेवल पर पहुंच पाए। सेवन स्टेप्स हैं इसके कृष्ण प्रेम के। तो इसलिए कोई सोचे कि नहीं नहीं हम कोई शिक्षा में थर्ड श्लोक फॉलो करने की जरूरत नहीं है और ऑलरेडी हम भजन कर रहे हैं राग मार का, ये इल्यूजन है। ये क्वालिफिकेशन सबसे जरूरी है, ये क्वालिफिकेशन अटेंड करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए समर्पण की आवश्यकता है, ठीक है। तो समय लगता है रुचि के स्टेज में पहुंचना, आसान नहीं है। भक्तिनाथ ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा भक्ति तत्व विवेक, उसमें उन्होंने रुचि के स्टेज में जो भक्त हैं उनको उत्तम वैष्णव बताया, उत्तम वैष्णव बताया जो रुचि के स्टेज में। अगर इस जीवन काल में अगर मध्यम स्तर पर भी पहुंच जाए तो इसका मतलब समझ लीजिए अगले जीवन में धाम जाना गारंटी हो जाएगा, या इसी जन्म में अगर मध्यम अधिकारी स्तर पर पहुंच जाए तो प्रभुपाद जी की कृपा होगी हम इसी जन्म में धाम जा पाए कृपा शक्ति से। लेकिन निष्ठा के स्तर पर पहुंचना पड़ेगा ना, आसान नहीं है, हम सबके लिए बहुत तपस्या बाबा, हम जितने भी कनिष्ठ भक्त हैं या जो नहीं भी हैं सबके लिए, खासकर जो कनिष्ठ अवस्था में हैं उनके लिए बहुत तपस्या, बहुत खतरा भी है, तपस्या भी है और खतरा भी ज्यादा है। इसलिए हमारे जो आचार्य जो प्रभुपाद भी कहते हैं कि ज्यादा समय तक कनिष्ठ अवस्था में नहीं रहना चाहिए, ये स्पिरिचुअल लाइफ के लिए सेफ नहीं है। जो अधिकांश जितने भी फॉल डाउन होते हैं वो कनिष्ठ लेवल पर ही होते हैं मैक्सिमम 99.9%। इसलिए केवल सालों से नहीं गिना जाता है, अधिकार जो है भक्ति के स्तर के आधार पर होता है। तो अगर कोई उस लेवल पर है नहीं तो साल बीत भी गए, मान लीजिए 30 साल भी बीत गए, अगर कनिष्ठ लेवल पर है तो तब भी खतरा है। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। गॉड प्रेमानंद। हरे कृष्ण।